काल नैदा बता युष्मन यद शिक्षत गुरुर भगवान अनुवाद आप पीछे दोहरा सकते हैं चाहे तो। हिरण्यकशिप ने कहा हे प्रहलाद मेरे पुत्र हे चिरंजीव इतने काल में तुमने अपने गुरुओं से बहुत सारी बातें सुनी, अब तुम उन सब में जिसे सर्वश्रेष्ठ समझते हो उसे मुझसे कह सुनाओ। ऑफ कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग जो है ये पूरा प्रसंग है, और ये हिरण्यकश्यप के प्रश्न पूछने के बाद में जो ऑफ कोर्स प्रहलाद भरत सेक्शन में बहुत सारे प्रसिद्ध श्लोक हैं, लेकिन जो एक उनमें से प्रसिद्ध श्लोक वो अगला श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम भारत से नवदा भक्ति के ऊपर जो है ये प्रहलाद भरत जी उपदेश देंगे। और प्रभुपाद जी ने 10 पेज का लगभग तात्पर्य दिया उसके ऊपर, तो आपको आने वाले कुछ कक्षाओं में उनका तात्पर्य कवर होगा, वो एक दिन में कवर भी नहीं होगा। तात्पर्य प्रभुपाद की, इस श्लोक में हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से पूछता है कि उसने अपने गुरु से क्या सीखा है। प्रहलाद महाराज के दो गुरु थे, एक तो शुक्राचार्य के पुत्र शंड तथा अमर्क जिन्हें उनके पिता ने नियुक्त किया था, तथा दूसरे गुरु नारद मुनि थे जिन्होंने उन्हें तब शिक्षा दी थी जब वे अपनी माता के गर्भ में थे। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता के प्रश्न का उत्तर उन उपदेशों के आधार पर दिया जिन्हें उन्होंने अपने गुरु नारद से प्राप्त किया था। इस तरह पुनः मतभेद उत्पन्न हो गया क्योंकि वे अपने गुरु से सीखी सर्वोत्तम बात बताना चाहते थे, जबकि हिरण्यकश्यप राजनीति तथा कूटनीति के विषय में सुनना चाह रहा था जिन्हें उन्होंने शंड तथा अमर्क से सीखा था। पिता और पुत्र के बीच का यह मतभेद तब बढ़कर और गंभीर हो गया जब प्रहलाद महाराज ने अपने गुरु नारद से जो सीखा था उसे बताया। हरे कृष्ण, तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है, और इस बहुत ही दिव्य विषय में जो है मैं बोलने को अनक्वालिफाइड सोच रहा हूँ अपने आप को, लेकिन फिर भी आप सब भगवत ब्लेसिंग से जो मौजूद है कुछ बोलने का प्रयास मैं करूंगा। जगन्नाथपुरी में एक बार चैतन्य महाप्रभु जो है वो एक समुद्र के किनारे नहीं थोड़ी पास में ही जो वहां पे ओशन है समुद्र है उसके पास में एक जगह पे गदाधर पंडित को जो है एक जगह रहने के लिए स्थान देते हैं, एक गार्डन, और वहां पे महाप्रभु लगभग नियमित रूप से आया करते थे। वहां पे मे नॉट बी डेली दैनिक नहीं बट नियमित रूप से गदाधर पंडित के पास आया करते थे, और एक दिन जो है महाप्रभु कुछ गड्ढा खोद रहे थे वहां पे उस जगह पे, और गड्ढा खोदते हुए जो है उन्हें एक मूर्ति का मुकुट या सिर जो है प्राप्त हुआ। तो उन्होंने तुरंत गदाधर पंडित को बुलाया कि गदाई में आपको जो हो एक बहुत विशेष उपहार देना चाहता हूं, तो क्या स्वीकार करोगे? और जब उन्होंने निकाला तो क्या कौन से विग्रह थे? वो टोटा गोपीनाथ जी, गोपीनाथ जी के विग्रह थे, और क्योंकि वो उस बगीचे में प्राप्त हो गए तो उड़ीसा में एक गार्डन का टोटा कहा जाता है, इसलिए उनका नाम पड़ा टोटा गोपीनाथ। और फिर महाप्रभु ने उनको जो है गदाधर पंडित को क्षेत्र संन्यास दिया और उनको आदेश दिया कि आप जो है गोपीनाथ जी की सेवा कीजिए। महाप्रभु गंभीरा में रहते थे और गदाधर पंडित टोटा गोपीनाथ में रहते थे, और अपने जब महाप्रभु सुबह हरिदास ठाकुर से मिलते थे सिद्ध भगवान के अंदर उपल भोग के बाद, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जो है समुद्र में स्नान करने जाया करते दोपहर में, उसके बाद अपना लंच स्वीकार करते थे प्रसादम, उसके बाद थोड़ा विश्राम करते थे, और उसके बाद जो है कई भक्तों के साथ में गोष्ठी किया करते थे जिनके द्वारा, तो महाप्रभु स्वयं आया करते थे इस जगह पे जहाँ टोटा गोपीनाथ मंदिर है, और गदाधर पंडित से जो है विशेषकर श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए। और चैतन्य भागवत में बताया है कि जो है महाप्रभु कौन सी कथा सुनते थे गदाधर पंडित से? ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज की कथा, और एक बार नहीं 100-100 बार वो जो है इस कथा को सुनते थे। तो ऐसे तो हम सब इस बात को जानते हैं, कोई बहुत विशेष बात नहीं होगी कि कोई बड़ी बात नहीं वहां पर कथा को सुनते थे, लेकिन अगर थोड़ा सा गहराई से विचार किया जाए तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, गदाधर पंडित राधा रानी है, और वो उस जगह पे जो है इकट्ठे होकर के प्रहलाद भारत ध्रुव भारत चरित्र के बारे में वर्णन कर रहे हैं। और एक बार नहीं, कई 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 बार जो है, तो उससे एक चीज तो कंक्लूड कर सकते हैं कि निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण जो है और बहुत ही आनंद प्रदान करने वाला टॉपिक है भक्तों को। तभी तो इसीलिए अब हम भी अपने जीवन में भी देख सकते हैं, इसे लगभग 10 चैप्टर है सातवें स्कंद के अंदर, और अगर मान लीजिए एक एक अध्याय के अंदर एवरेज 35-40 श्लोक हुए तो लगभग 400 श्लोक, और एक एक कवर करते हैं तो अभी एक साल तक अभी 5 अध्याय पे और आगे 5 अध्याय खाली प्रहलाद महाराज के ऊपर है, तो 400 दिन एक सवा साल हमें रोज एक ही चरित्र के ऊपर एक ही कैरेक्टर के ऊपर सुनने का मौका मिल रहा है। इसके दो पहलू हो सकते हैं कि जब हम कोई चीज जानते हैं पहले से तो एक पता मैं तो जानता हूं, इसे हजार बार सुन चुका, दोबारा सुनने की क्या आवश्यकता है। और भौतिक विषयों के साथ ऐसा ही होता है, अगर भौतिक दुनिया में कोई कैरेक्टर हो उसके बारे में एक दिन दो दिन चार दिन का व्यक्ति सुन सकता है, चाहे कोई फ्रीडम फाइटर हो, चाहे कोई फिल्म एक्टर्स हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स स्टार्स हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, सक्सेसफुल कोई भी व्यक्ति हो भौतिक दुनिया के अंदर, उसके बारे में एक दिन दो दिन चार दिन एक हफ्ता एक महीना सुन लेंगे। और हो सकता है कि वो एक मानसिकता, जब हम श्रीमद् भागवत में कैरेक्टर के बारे में भी सुने, विशेष के इतने लंबे चल रहे होते हैं, जड़ भरत के भी अध्याय के 7 अध्याय लगभग आते हैं और ऐसे कुछ कुछ चरित्र के अंदर, तो हमें हो सकता है कि हम मालूम है रोज वही बात बोली जाएगी। और कई बार भी हम देखते भी है कि जो वक्ता भी कंफ्यूज होते हैं कि क्या बोले जाए इसके ऊपर, कई बार ये भी कंफ्यूजन होता है कि और क्या बोला जाए, क्योंकि वही बात बार 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 जो है बोली जा रही है। तो लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक बहुत सुंदर अवसर है कि हम ऐसे महान भक्तों के महाजनों के चरित्र में और अधिक एब्जॉर्ब हो सके। सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा अवसर है कि चाहे फोर्सिबली चाहे वो और भी ऑप्शन नहीं है तो हमें सुनना ही पड़ रहा है। सो इट कैन बी टेकन इन अ वेरी पॉजिटिव वे, बहुत ही अनुकूल दृष्टिकोण से इसको स्वीकार किया जा सकता है कि बहुत अच्छा मौका है कि बहुत गहराई से प्रहलाद महाराज के और अन्य सभी कैरेक्टर भागवतों के भी कि अपने जीवन में उसको अनुकूल कर सके, नहीं तो उससे बहुत बोर्डम फील करने लगे कुछ समय बाद में कि वही बात रोज हो रही है। तो ये एक चीज मैं इस कथा के बारे में सोच रहा था, क्योंकि विशेषकर कई प्रसंग बार 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 वक्ता वही बोलते हैं, कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा या चंद्र सभी की रथी या प्रहलाद महाराज कुछ क्वालिटीज, और अगर इतना महत्वपूर्ण नहीं होता तो शायद गदाधर पंडित चैतन्य महापुरुष को इतना रिलीज नहीं करते। अब प्रहलाद महाराज का जो चरित्र है ये इट्स अ वेरी रिपीटेटिव फिनोमिनन इन स्क्रिप्चर्स, बार बार एक चीज जो है शास्त्रों में देखने को मिलती है, जो हो सकता है ऑफ कोर्स यहां सब भक्तों की सभा है तो इसीलिए हमें मालूम है लीला है और पीछे क्या हुआ आगे क्या होने वाला है, जय विजय हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु कौन है। पर अगर एक दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए, एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से जिसे भगवान पर ज्यादा श्रद्धा नहीं है, उसे मालूम है लीला क्या होता है, भगवान क्यों करते हैं, तो अगर वो इस शास्त्रों को पढ़े तो कई सारे लीलाओं को पढ़ के या कई सारे भक्तों के चरित्र को सुन करके शायद कोई भक्ति करने में उसको बहुत संकट उत्पन्न हो जाए। ऐसे कई सारे चरित्र हैं, एक चरित्र प्रहलाद महाराज का ही है कि 5 साल के बालक हैं और क्या दोष है, चाहे मान लीजिए कोई माता पिता ये बोलेंगे नादान बच्चा खेलने कूदने भक्ति कर रहा है मान लीजिए, लेकिन अभी जब जैसे प्रहलाद महाराज अगला श्लोक बोलेंगे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम हिरण्यकशिपु, इतना पहले एक बार ही बोला था सात मंगे सुनवा दिया देखना, तब हिरण्यकशिपु ने बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया कि अच्छा कुछ लोग आ रहे होंगे बच्चे को सिखाते होंगे, बोला शरण मत पर दोबारा ठीक से पढ़ाओ, लेकिन इस बार इतना गुस्सा आया हिरण्यकशिपु को सीधा उठा के प्रहलाद महाराज को फेंक दिया और फिर बहुत अच्छा आगे प्रसंग रोचक प्रसंग भी आएगा कि बोलेगा इसको मार डालो जो है, और तरह तरह के जो है हथकंडे अपनाएंगे प्रहलाद महाराज को मारने के लिए, लेकिन प्रहलाद महाराज जो है वो तो भगवान के द्वारा सुरक्षित रक्षा की जा रही है उनकी, तो कुछ होता नहीं। लेकिन जब प्रहलाद महाराज सुरक्षित रहते हैं, हिरण्यकश्यप को अपना सारा बल लगाने के बावजूद भी, तो हिरण्यकश्यप बहुत भयभीत हो जाता है कि इस बालक को इतनी शक्ति कहां से प्राप्त हो रही है। और फिर वो प्रसंग आता है जब फिर प्रहलाद को फिर चंद्रमा को सलाह देते हैं, और इस बार प्रहलाद महाराज का उत्साह और करेज साहस जो है और अधिक बढ़ जाता है। अभी तक तो वो अपने आप भक्ति करते थे, अब अपने स्कूल में टीचिंग चालू करते हैं, और ये देख के सारे स्टूडेंट और डर जाते हैं। आगे का चैप्टर आएगा कि प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश, तो ये अगला वो है। और वो असुर सहपाठी पूछेंगे कि आपको ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, व्हाट इज द सीक्रेट। तो उसका अगला चैप्टर प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा, तब प्रहलाद महाराज वो बताएंगे कि इस प्रकार से वो बहुत ही बड़ा शिक्षक है। और फिर फाइनली नरसिंह जब हिरण्यकश्यप को देखता है कि ये तो पहले एक था, अभी तो पूरा इसे जो है टीम इकट्ठा कर लिया है यहाँ पे, तो वो कहे इतनी शक्ति कहां से आ रही है तुम्हारे अंदर। तो फाइनली फिर वो एपिसोड का क्लाइमेक्स आएगा जब नरसिंहदेव हिरण्यकश्यप का वध करेंगे। तो प्रहलाद महाराज का अगर एक भक्ति दृष्टि से ना देखा, हमें तो मान लीजिए इस बात को भूल जाएंगे महाजन है, महान भक्त है और नारद में शिक्षा प्राप्त हुई है, तो उसमें गलती नहीं है। इतना अधिक टॉर्चर उन्हें सहन करना पड़ रहा है कि उन्हें विष पिलाया जा रहा है, हाथियों के नीचे रौंदा जा रहा है, पहाड़ी की चोटी से फेंका जा रहा है, त्रिशूल और भालों से और तलवार से मारा जा रहा है। तो अगर कोई साधारण कोई नया व्यक्ति ये लीला सुने तो बोले ये लो अपनी माला, अगली बार से इस बार मंदिर में कभी नहीं आ रहा, हो सकता है कि इसमें डर लग जाए। और ये देखिए एक प्रहलाद का क्या चरित्र नहीं है, जो भी भगवान की भक्ति करने का प्रयास करता है जितनी दृढ़ता से उसको उतनी अधिक बाधाएं आती है। और महान महान भक्त हरिदास ठाकुर का क्या दोष था, वो केवल 192 माला जप करते थे, उनकी गलती नहीं थी कि वो यवन परिवार में जन्म हुए थे, उनका जन्म हुआ था वही भगवान की इच्छा से प्रकट हुआ, भगवान की इच्छा से ही जन्म हुआ था। ब्रह्मा जी की ने उनसे भगवान से वरदान मांगा था, आशीर्वाद मांगा था जब ब्रह्मा विमान लीला के दौरान। लेकिन हरिदास ठाकुर के रूप में जब वो नाम जप कर रहे थे और फुलिया ग्राम में थे तो 22 बाजारों के अंदर जो है उनकी पिटाई की गई। आप सोचिए कोई गलती थोड़ी थी, उस समय तो हरिदास ठाकुर प्रचार भी नहीं कर रहे थे, जब करते थे उनके जहां वो जिस गांव में जाते थे अपने आप उनकी प्रसिद्धि फैल जाती थी, लेकिन 22 बाजार के अंदर उनकी ऐसी पिटाई की गई। नारद मुनि जब वो अपने पूर्व जन्म के अंदर छोटे बालक थे, बॉय दासी पुत्र थे, वो भी ऐसे छोटे 5-6 साल के बालक थे और उनकी भी कोई गलती नहीं थी। चार पांच भक्ति वेदांति संत आए और उनकी माता सेवा करते थे उनकी, तो वो भी सेवा करने में लग गए उनकी। लेकिन और उन बेचारे बालक की अगर ऐसे दृष्टि देखा गया, बहुत बालक की एकमात्र इस दुनिया में कोई था तो वो था उनकी माता, पिता थे नहीं, और 5-6 साल के बालक के लिए और कौन सहारा होता है। लेकिन उनकी माता को जो है सर पे डसने से मृत्यु हो गई। लेकिन रक्षा की, लेकिन अगर दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने अगर मरे हुए सांप को भी डाला तो इतना बड़ा कार्य नहीं किया था कि उन्हें मृत्यु दंड प्राप्त हो, उनकी भी कोई गलती नहीं थी। हम देखें पांडवों और द्रौपदी का क्या दोष था, जो इतने अधिक कष्ट उन्हें सहन करने पड़े। अगर पांचों भाइयों और कुंती माता द्रौपदी का चरित्र देखें तो वनवास, कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में जो है वो सारे कष्ट याद कर रही है और भगवान के प्रति आभार प्रकट कर रही है। विशाल महाग में पुरुषार्थ दर्शनाद असस्त भाया वनवास पृथ्वत हृदय हृदय अनेक महारथास्त्र तो द्रोणी चास्त्रता स्वयं अभिरक्षिता। कि बचपन में विशाल महल में जो है विष पिला दिया भीम को, महात्म्य वारणा व्रत में जो है अग्नि के अंदर उनको जलने के लिए छोड़ दिया। पुरुषार्थ दर्शनार्थ जंगल के अंदर उन्हें महान पुरुष को जो हिडिंब उसका देखना पड़ा और कई कई राक्षसों को। जय श्री राधा अधिकरण भगवान की, श्री रघुनाथ जय श्री भगवान की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौड़ की, श्री प्रभुपाद की। और फिर विशाल महाग्रह पुरुषार्थ दर्शन असत असत सब आया। और द्रौपदी का क्या दोष था कि उनको इस प्रकार का अपमान सहना पड़ा। वनवास से पृछत और उसके बाद में 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास रहना पड़ा। सोचिए महाराज युधिष्ठिर राजयज्ञ कर चुके थे और पूरी पृथ्वी के सम्राट थे और विराट के वहां पे एक जो है मिनिस्टर के रूप में एक मंत्री के रूप में कह सकते हैं या सभासद के रूप में जो है उन्हें वहां पे नौकरी करनी पड़ी चुप करके। असत सभाया वनवास एक महारथास्त्र तो और भी इतने सारे महान दिव्यास्त्र जो है महारथियों के द्वारा फेंके गए लेकिन भगवान की रक्षा की। लेकिन अगर देखा जाए रक्षा की वो एक बात है लेकिन इतने कष्टी क्यों है कि तो अगर कोई लॉजिकल दृष्टि से देखा जाए तो एक प्रश्न पूछ सकता है क्या भगवान इतने क्रूर है कि नहीं। भगवान ने रक्षा की हो तो एक बात है कि नहीं। लेकिन अगर सोचा जाए तो भगवान ने अपने भक्तों को इन्हें कि असुर थे दुष्ट थे असुरों को देखे तो फलफूल रहे। हिरण्यकशिपु को देखा जाए तो बिल्कुल बड़ा साम्राज्य है उसका। रावण को देखा जाए तो सक्सेसफुल था कि नहीं। कंस को देखा जाए तो महाशक्तिशाली था। लेकिन क्या भगवान अपने भक्तों पर जितने निष्ठुर हैं इतने कठोर हृदय वाले हैं या भगवान जानते नहीं है कि उनको इतना संकट आने वाला है? ये भगवान को ऐसा क्या आनंद प्राप्त होता है अपने भक्तों में संकट में डालने के लिए? ये प्रश्न निश्चित रूप से जो है ऐसी लीलाओं को पढ़ के किसी के मन में आ सकता है। क्या भगवान को आनंद प्राप्त होता है अपने महान भक्तों को ऐसी स्थिति में डालने के लिए? भरत महाराज का अगर चरित्र देखे तो उनके चरित्र में क्या दोष था? वो तो भाव की स्थिति में थे, युवा अवस्था के अंदर सारे साम्राज्य को ऐसे छोड़ करके आ गए थे जैसे कोई मल त्याग के छोड़ देता है। पूरी पृथ्वी के राजा थे और ऐसा नहीं कि वो कोई कायर राजा थे, वो पूरे भारत के नाम भी भारतवर्ष नाम भी उनके ऊपर पड़ा है। महान शक्तिशाली और भगवान के अवतार ऋषभदेव के पुत्र थे वो। लेकिन जंगल में गए तपस्या कर रहे थे लेकिन फिर क्या एक हिरण से आसक्त हो गए, खुद को हिरण बनना पड़ा। सोचे क्या पनिशमेंट है? अगर देखा जाए तो क्या भगवान ने जितना उन्होंने किया उस सबको नलिफाई कर दिया? क्या भगवान को आनंद आता है अपने भक्तों को ऐसे कष्ट में डाल करके? ये बहुत दुविधा वाला प्रश्न जो है हो सकता है किसी भक्त के लिए। और शायद हमें शिक्षा ये ग्रहण कर ले कि यदि भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है तो जो है अपनी चमड़ी मोटी कर लो, इतना सर भी संकट आ जाएगा। और वैसे अगर देखा जाए तो इन लीलाओं से एक चीज हम सीख सकते हैं कि संकट तो आएगा ही आएगा क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। अगर हम किसी और की भक्ति करते हैं किसी अन्य भौतिक वरदान के लिए तो हम भौतिक जगत में परेशान रहते रहेंगे। लेकिन कृष्ण जो है अपने भक्तों के परम हितैषी हैं और भगवान कृष्ण का एक नेचर है इस ट्रांसेंडेंटल एरिस्टोक्रेटिक जेलस लवर कि भगवान दिव्य और बहुत ही जो है जेलस लवर है कि वो चाहते हैं उनके भक्त केवल उन्हीं से प्रेम करें और भगवान एक्चुअली केवल अपने भक्तों से अन्य प्रेम करते हैं। हो सकता है वो समूह हम सब भूतेषु हो लेकिन जो अपने भक्त उनके होते हैं विशेष प्रेम करते हैं। लेकिन भगवान अपना प्रेम दिखाते कैसे भक्त के प्रति? लेकिन अगर भौतिक दुनिया में देखा जाए तो प्रेम की परिभाषा या प्रेम का ट्रांजेक्शन अगर देखा जाए तो होता है कि हाँ गले मिलेंगे, उपहार देंगे, अच्छे शब्द बोलेंगे, एक दूसरे की सेवा करेंगे, उसको कंफर्ट प्रदान करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसी लीलाओं को देख के तो ये प्रश्न होता है कि भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं सही है? और कैसा प्रेम करते हैं? ऐसा प्रेम तो अगर यही हमारा लक्ष्य है कृष्ण प्रेम तो बहुत मुश्किल है। लेकिन तो कृष्ण अपने भक्तों का जब प्रेम करते हैं तो वो पूरी दुनिया की कंसिडरेशन नहीं देखते. ही सीज ओनली हिज डिवोटी कि मेरे और मेरे भक्त के बीच में क्या संबंध है, कि किस प्रकार भक्त का मेरे प्रति जो है प्रेम या आसक्ति या अटैचमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए. और देखिए जितने एग्जांपल अभी मैंने बोले उन सब में से कोई भी भक्त इंटेस्ट में फेल नहीं हुआ. तो ऑफ कोर्स हमारी भक्ति के अंदर भी टेस्ट वही आएंगे जितना हम झेल सकते हैं, क्योंकि कृष्ण उतने क्रूर नहीं है कि ऐसा टेस्ट दे देंगे जो आउट ऑफ सिलेबस हो, जिसे पता है कि बच्चा फेल ही होना है. तो ऐसा तो टेस्ट हमारे भक्ति का आने वाला नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टेस्ट आने वाले नहीं है, कुछ समस्याएं आने वाली नहीं है. अगर टेस्ट नहीं होगा, एग्जाम्स नहीं होंगे तो कोई ग्रो नहीं करेगा, लेकिन एग्जाम्स को देखा जाए तो बोला सिर दर्दी है. लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो अगर एक क्लास से दूसरे क्लास में जाना है तो टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है. लेकिन नहीं तो बड़ी क्लास में जाकर दिक्कत आएगा अगर वो व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं है. तो एक तरीके से देखा जाए तो एग्जाम किस लिए होते हैं, उस व्यक्ति की मसल्स को डेवलप करने के लिए, उसके ब्रेन को डेवलप करने के लिए, उसके बौद्धिक विकास के लिए जो है परीक्षा होती है. तो भगवान भी हमारे आध्यात्मिक मसल्स को, स्पिरिचुअल मसल्स को डेवलप करने के लिए भक्त का उसकी भक्ति के अनुसार परीक्षा लेते हैं. और जितने ये महान भक्त हम देखते हैं इन सबका बहुत कठोर कठोर टेस्ट हुआ. देखिए और भगवान सब जानते थे, भगवान ने ये शक्ति दी सब कुछ सहन करने की. जैसे प्रहलाद भट्ट को पता भी नहीं था उनके साथ ये सब हो रहा है. जैसे इसके शिक्षाश्रम को आए थे भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने पीछे एक बड़ी मायापुर में एक कथा बताई थी नरसिंह पुराण से, कि जब प्रहलाद महाराज इतने अधिक कृष्णा कॉन्शियस थे, वो किसी भी चीज को देखते थे तो उसको कृष्ण जो है रिलेशन देखते थे. कैसे, जब उन्होंने विश्व को देखा तो क्या देखते हैं, ये तो मेरे मामा है. कैसे मामा है, क्योंकि विश्व कहां से उत्पन्न हुए, समुद्र मंथन के दौरान. उसी समुद्र मंथन से कौन उत्पन्न हुई थी, रमा देवी लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी. तो भगवान विष्णु पिता हुए, लक्ष्मी देवी माता हुई, इस प्रकार से तो विश्व क्या हुआ, उनका भाई हुआ, क्योंकि एक ही पिता है समुद्र में. तो भारत भर में उदाहरण दे रहे थे कि जब शिव जी का वो सर्प को सर्पों के उसमें डाला होने तो देख रहे ये तो मेरे भगवान का क्या बिस्तर है, बैठे अरग देश भी नहीं भगवान का बैठ है, तो भगवान इसके विश्राम करते हैं. तो सो कृष्ण कॉन्शियस प्रहलाद महाराज. या हरिदास ठाकुर चरित्र में देखे, जब उनकी पिटाई हो रही थी तो वो क्या सोच रहे थे, वो ये नहीं सोच रहे कब खत्म होगी, कौन से डॉक्टर के पास आऊंगा, या भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि भगवान इनको कुछ बचाओ बचाओ. वो केवल हरिनाम का जप कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं किसके लिए, उन लोगों के लिए जिनकी पिटाई कर रहे हैं. ये तो अनइमेजिनेबल है कि कोई हमको इतना कष्ट दे और हम उसके हित के बारे में सोचे. ये तो बिल्कुल बिल्कुल असंभव असंभव कार्य है कि ऐसा कभी हो. तो हरिदास ठाकुर चरित्र हम देखते हैं. और तब चैतन्य महाप्रभु बाद में महाप्रकाश जी उनको बताते हैं स्वयं कि जब वो जल्लाद तुम्हारी पिटाई कर रहे थे मैंने क्या किया था, अपने चक्र को मेरा चक्र तुरंत अपने आप प्रकट हो गया था. मैंने भी उससे पहले चक्र चला गया भक्तों की रक्षा करने के लिए. लेकिन ये हरिदास आपने देखा और क्या किया, आपकी शक्ति के सामने मेरे सुदर्शन चक्र की शक्ति कम पड़ गई. क्यों, आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान इनके लिए जो है इनकी रक्षा कीजिए, मालूम नहीं क्या कर रहे हैं, इनका उद्धार हो सके. तो कल भी ऐसे कुछ लोग क्रिसमस मनाते हैं, बट अगर जीसस क्राइस्ट का चरित्र में देखा जाए तो ही सफर्ड फॉर द सिंस ऑफ हिज फॉलोअर्स. और वो उस समय प्रार्थना करे जब क्रूसीफाई किया जा रहा है तो प्रार्थना कर रहे हैं माई लॉर्ड बी सेव देम फॉर दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग. उनको मालूम नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, इसीलिए उनको जो है वह बोध है, आप जो है उनको इसका अपराध मत लीजिएगा. तो कृष्ण के प्रेम करने का जो तरीका है वो बहुत विचित्र है अपने भक्तों के प्रति, कि भगवान प्रेम कर भगवान चाहते हैं जो प्रेम भक्तों से, वो ये है कि बिकम टोटली हेल्पलेस एंड ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, चाहे वो ट्रिबुलेशन हो चाहे टेम्पटेशन हो. हरिदास ठाकुर ने टेम्पटेशन एक और टेस्ट हुआ उनका, वो तो प्रोस्टिट्यूट तो आई बिना बोल के अंदर, वेश्या जब आई तो वो तो एक था. उसके बाद में शांतिपुर के पास जो है स्वयं माया देवी उनके सामने प्रकट हुई. और वो चैतन्य चरितमृत में जब डिस्क्रिप्शन अगर पढ़ते हैं माया देवी का तो शायद पढ़ने के बाद तो व्यक्ति उत्तेजित हो जाए. और हरिदास ठाकुर जो है उनके सामने स्वयं माया देवी प्रकट हुई और बाद में वो कह रही है कि पहले मैंने जो है बाद में 3 दिन के बाद में जब उन्होंने हरिनाम लेना शुरू किया तो हरदास ठाकुर से कह रही है कि पहले मैंने शिव जी से दीक्षा ली थी राम नाम के अंदर, लेकिन आप जो है अभी कृष्ण नाम के अंदर दीक्षा ली थी और बोले न भूतो न भविष्यति कि मेरी माया से तो कोई नहीं बच पाया, केवल पहले आप हरिदास ठाकुर और आगे भविष्य में कोई नहीं बच पाएगा। सो चाहे इतनी प्लेजरेबल स्थिति थी भौतिक दृष्टि देखा जाए, चाहे भौतिक दृष्टि से इतनी संकटमय स्थिति थी, हरिदास ठाकुर वाज ऑलवेज कृष्ण कॉन्शियस। सेम प्रहलाद महाराज सीता देवी के चरित्र में देखा जाएगा, तो एक भक्त की लॉयल्टी चेस्टिटी भगवान के प्रति तभी टेस्ट होती है। और जब और भगवान कैसे भक्त से प्रेम करते हैं तो ये तो हुआ कि भक्त भगवान में भक्ति परीक्षा लेते हैं किस प्रकार से कि उसके मन में भगवान के अलावा और अन्य कोई आश्रय रही ना जाए, अन्य कोई अभिलाषा रही ना जाए, तो इस प्रकार से भगवान भक्ति मदद करते हैं उनके जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करने के लिए। जैसे हम भी रोज तुलसी राम से प्रार्थना करते हैं ये तो मार शरण लय तार वांछा पूर्ण है कि जो आपके शरण लेता है वो क्या है उनकी सारी आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी होती है कि देखिए कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी। हम रोज प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान भी सुन रहे हैं। अब ये हमारी टेंशन नहीं है कि हमें वृंदावासी बनता है, ये हमारी इच्छाएं, और भगवान की टेंशन तुलसी मानो टेंशन है कि हमारी इच्छाएं पूरी होगी, चलिए आध्यात्मिक इच्छाएं जो है और उसके लिए बंदोबस्त करना पड़ेगा हमें, चाहे हम चाहे whether we want it or not, और जहां जहां रजिस्ट करेंगे तो वहां पर भगवान को थोड़ा टॉर्चरस जो है अटैचमेंट में जब खींचा जाएगा तो फेन तो होगा ही होगा। तो उस प्रकार से भगवान जो है अपने भक्त की आसक्ति बढ़ाते हैं। लेकिन भगवान कैसे प्रेम करते हैं, कृष्ण चाहते हैं कि मेरे भक्त है ललित में, खुद तो भगवान स्वयं गुणगान करते हैं और भगवान उस भक्त को दो प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने लिमिटेड बुद्धि से दो ही प्रकार सोच पाया और भगवान को कौन जान सकता है, लेकिन फिर भी जो मेरी छोटी सी बुद्धि है, एक तो है कि भगवान उस भक्त को यूज करते हैं माध्यम के रूप में अन्य आने वाले सारे भक्तों को सिखाने के लिए कि भक्ति के मार्ग में हमारे रोल मॉडल्स कौन हैं और हमें भक्ति के मार्ग में किस प्रकार के टेस्ट के लिए और किस प्रकार के रिजल्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। मान लीजिए प्रहलाद महाराज जी में ये दिक्कत नहीं आती, हरदास ठाकुर जीवन चरित्र में दिक्कत नहीं आती, वह दिक्कत नहीं आती तो हम थोड़ी यहां चर्चा कर रहे होते होंगी, फिर हम क्या सीखते हैं, है कि नहीं। तो उस प्रकार से भगवान एक तो उस प्रकार से अपने भक्त को यूज करते हैं अन्य को शिक्षा देने के लिए, तभी प्रहलाद महाराज एक महाजन है। और दूसरा है भगवान स्वयं भी अपने भक्त की इस महिमा को याद करके गुणगान करके एक्चुअली कृष्णा क्राइस्ट ईयर्स भगवान भी जो है वो रोते हैं जब देखते हैं कि मेरे भक्त उन्होंने क्या नहीं करते मेरे लिए, क्या क्या सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं तैयार है। और मैंने दो बार ये सुना है, हालांकि पढ़ा तो नहीं है, लेकिन दो अलग अलग बोनाफाइड में सुना है कि कृष्ण अपने जो नित्य संगी हैं, जो नित्य पार्षद हैं, उनसे अधिक ज्यादा प्रेम किससे करते हैं, जो उनकी नैमित्तिक लीला के अंदर यानी जो 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 भौतिक जगत में लीलाएं होती है उनके भक्तों, जो भक्त सॉरी जो भक्त भौतिक जगत में रहकर जो भजन सेवा कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर प्रहलाद महाराज ऑफकोर्स नरसिंह देव के लोक में होंगे, मतलब वैकुंठ के अंदर, लेकिन वहां हिरण्यकशिपु नहीं होगा, उनको टॉर्चर नहीं दिया जा रहा होगा, तो ऐसी परीक्षाएं आध्यात्मिक जगत में नहीं आने वाली। लेकिन भगवान जब देखते हैं कि भौतिक जगत में मेरी सेवा करने के इन भक्तों ने क्या क्या सेक्रीफाइस नहीं किया, जैसे वृंदावनवासी, वृंदावनवासियों का क्या दोष था, जब कृष्ण अवतीर्ण होने अभी हुए भी नहीं थे तभी माता देवी और वसुदेव को कारागृह में डाल दिया, 6 पुत्रों को उनके सामने निशंस रूप से कंस ने हत्या की, और फिर कृष्ण प्रकट हुए तो भी देवकी वसुदेव ने यही बोला भगवान ये क्या किया आपने। जब कृष्ण प्रकट हुए तो कृष्ण की सुरक्षा के बारे में चिंतित थे और वृंदावन ले जाने का गोकुल ले जाने का जो है व्यवस्था की उन्होंने, और जैसे ही कृष्ण वहां पर पहुंचे अब तक वृंदावन शांति था, वहां कोई टेंशन नहीं थी, दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही कृष्ण पहुंचे पूतना तृणावर अघासुर बकासुर अधिष्ठासुर और ये वो सब इतने सारे असुर आने लगे जो है, और जब कृष्ण ने कुछ असुरों का वध करके बोले कि जब तक वृंदावन में रहूंगा तब तक ये वृंदावासियों को संकट आएगा, तो कृष्ण वृंदावन से जाते हैं बोले क्या कि अभी देखो मेरे को थोड़ा सबको अपना कार्य भी पूरा करना है और अगर यहाँ रहूंगा तो आप लोगों को संकट आएगा, इसलिए अच्छा है बाहर जाता हूँ वृंदावन से। और गोपियों के संकट जो सैक्रीफाइस को ब्रजवासियों के सैक्रीफाइस को देख करके कृष्ण फेमस लोग बोलते ना पा रही है हम, कह रहे कि मेरे पास आपका ऋण चुकाने के लिए और कुछ नहीं है, मैं अपने आप को ऑफर कर दूंगा तो भी क्या है वो सफिशियंट नहीं होगा। और ऐसे ही प्रतापपुत्र महाराज का जब टेस्ट लिया भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, तो जब जगन्नाथ वल्लभ गार्डन से चैतन्य महाप्रभु को गोपी गीत सुनाते हैं प्रतापपुत्र महाराज, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहते हैं पूरिता जना और उनका आलिंगन करते हैं और बोलते हैं कि जो उपहार आपने मुझे दिया है उसके बदले में आपको कुछ कुछ नहीं चुका सकता, केवल मेरे पास एक ही वस्तु जो मैं आपको दे सकता हूँ वो क्या है अपना आलिंगन। और वहां पर उनको जो आलिंगन करते हैं तो जो है, और ऐसे भक्तों को याद करके भगवान स्वयं आंसू बहाते हैं। और तभी नित्य शास्त्रों के अंदर देखिए नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज दो महाभागवत के बीच में चर्चा हो रही, नारद मुनि के डिसाइपल है प्रहलाद महाराज और उनका इतना लंबा चौड़ा गुणगान कर रहे हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित यानी राधा और कृष्ण उस दृष्टि से देखा जाए वो बैठ करके प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज जी के चरित्र के बारे में जो है चर्चा कर रहे हैं। सो इस प्रकार से हम सीख सकते हैं कि भक्ति के अंदर हमारा भी कुछ टेस्ट आएगा और ऑफकोर्स भगवान शक्ति देंगे कि हम उस टेस्ट को पास कर सके, क्योंकि बिना टेस्ट के कोई भक्ति प्रगति नहीं कर सकता, फिर भगवान पर कैसे जाएगा। ये प्रार्थनाएं जो हम करते हैं वो थ्योरेटिकल रह जाएगी सारे के सारे, कृष्ण के कारण प्रार्थना को सक्सेसफुल करता है कि नहीं। तो और इन दिव्य चरित्रों से हम ये सीख सकते हैं और साथ में इनके चरित्र से पढ़ करके हमें एक अन्य पहलू मिल सकता है या नजरिया मिल सकता है कि कैसे हम अपने जीवन के अंदर आने वाले संकटों को देखें और इन आचार्यों से प्रार्थना कर सकते हैं, इनको रिमेम्बर कर सकते हैं, तो हमारे जो जो कष्ट है वो दूर हो जाएंगे। और जो प्रिंसिपल है, हायर प्रिंसिपल है भगवान की शरण ग्रहण करने का, उस पे हम फिक्स रहेंगे, नहीं तो बद्ध जीव या साधक भक्त के लिए बहुत समस्या वाला कारण है। एक तरह से कृष्ण टेस्ट ले रहे हैं, एक तरह से माया भी टेस्ट ले रही है कि माया चाहती है कि भाई क्यों जेल छोड़ के जा रहे हो, रुको यहाँ पे, और कृष्ण चाहते हैं आए मेरे पास, तो कृष्ण भी टेस्ट ले रहे हैं कि भक्त आगे बढ़े और माया देवी भी टेस्ट ले रही है भाग न जाए। तो साधक भक्त के पास जब माया देवी कृष्ण संघर्ष ले रहे हैं, माया देवी प्रलोभन ले रही है, दोनों परिस्थितियों में साधक फटक जाता है। तो हम ऐसे महान भक्तों के चरित्र से ये सीख सकते हैं, इनको इनको बार बार स्मरण करके रोज से हम श्रवण करने का हमें मौका मिल रहा है प्रभुपाद की कृपा से, कि हम अपने भक्ति के मार्ग के जो लक्ष्य है उसे भटके ना इस प्रकार से। और मैं एक बहुत रिसेंट घटना डिस्क्राइब करना चाहता हूँ श्रील प्रभुपाद लीलामृत से, कि क्योंकि अगर प्रहलाद महाराज और श्रील प्रभुपाद के चरित्र में भी देखा जाए तो प्रभुपाद हैड द सेम करेज एज प्रहलाद महाराज, सेम फियरलेसनेस, वही उनका नाम ही था भय है कि नहीं, और उतना ही करेज था। लंदन में जाके बोलते हैं प्रेस रिपोर्टर से लंदन इज हेल, इतना करेज किसके पास हो सकता है सोचिए। अमेरिका में जा करके और जहां पे पूरा डार्विन थ्योरी को बोल रहे डार्विन इज रास्कल, और वहां पे जैसे अभी तो खैर इंडिया में हम देखते हैं बट उस दौरान खासकर अमेरिका के अंदर वुमेन्स लिबरेशन टॉपिक इतना पीक लेता था, वुमेन रिपोर्टर आती थी और प्रभुपाद का बिल्कुल एग्जैक्टली वही जो है संदेश रहता था स्ट्रॉन्ग एकदम। तो प्रभुपाद पूरी की पूरी सिविलाइजेशन की जिसके ऊपर बेस्ड है वहां बैठ करके सबके सामने धज्जियां उड़ा सकते थे, प्रभुपाद बहुत करेज था। तो और कृष्ण को देखते दो हार्ट अटैक आए वृद्धावस्था के अंदर, तो प्रभुपाद ने आने वाले सारे भक्तों के लिए बेंचमार्क जो है किया है सेट किया है कि गुरु परंपरा के चैतन्य महाप्रभु के मिशन के लिए किस मतलब क्या अल्टीमेट लिमिट भी हो सकती है। ऑफकोर्स प्रभुपाद लिमिटेड तो मेरे को करना असंभव है, और प्रभुपाद की कृपा से यदि किसी को एम्पावर करे तो भक्त कुछ भी कर सकता है, मुक्तम करो दिवाचाना मंगम लंघा जय गिरिगत कृपातम हम मंदे श्री गुरु विमुदारिनम। लेकिन एक छोटा सा किस्सा जो है मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहता हूँ, ये है श्रीधाम मायापुर जहाँ अभी जाते हैं और अभी जाएंगे, वहां पे क्या 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 संघर्ष भक्तों को सहन करने पड़े। तो ये 1977 की बात है, मैं एग्जैक्टली कुछ कुछ पार्ट छोड़ दूंगा लेकिन प्रयास कर रहा हूँ पूरा इसी से पढ़ने के लिए। और अगर टाइम बचेगा तो हिजरत तमाल कृष्ण महाराज अपनी टीके जी डायरी के अंदर जो है और डिटेल के अंदर ये थोड़ा बहुत और इसको खुलासा करते हैं। तो 10 जुलाई 1977 को तमाल कृष्ण को गोपाल कृष्ण से एक फोन मिला। सुबह सुबह फोन किया तमाल कृष्ण महाराज के, तो गोपाल कृष्ण महाराज ने मायापुर मंदिर पर 300 डाकुओं का गिरोह ने आक्रमण कर दिया था। 5 भक्त घायल होकर अस्पताल में थे। भवानंद स्वामी ने आक्रमणकारियों पर बंदूक चलाई जिससे 2 घायल हो गए। पुलिस ने बुलाए जाने पर भी 2 घंटे बाद आई और उनको ना गिरफ्तार करके भवानंद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। श्रील प्रभुपाद को कभी सुना तमाल कृष्ण ने बताया, प्रभुपाद आकुल हो उठे और बोला, यदि डकैतों ने हम पर आक्रमण किया और हमने बंदूक चलाई तो उसमें बुरा क्या है। और उसी दिन हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर खबर छपी। खबर के अनुसार कुछ गायें इस्कॉन के क्षेत्र में आ गई थी और भक्तों ने गायों की पिटाई की थी। इससे गांव वाले क्रुद्ध हुए थे। जब मंदिर में शिकायत करने पहुंचे तो उन पर आक्रमण किया गया जिससे 2 घायल हो गए थे। खबर में भवानंद स्वामी का नाम छपा था और यह भी कि मंदिर के संस्थापक एसी भक्तिराम स्वामी उपस्थित नहीं थे। तो ये खबर छपी थी हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर, भारत के अंदर गलत खबर इस प्रकार से छापी गई। और इस खबर के एंड में लिखा था कि संस्थापक आचार्य एसी भक्तिराम स्वामी वहां मौजूद नहीं थे। अच्छा, प्रभुपाद ने यह सुना तो प्रभुपाद ये यहाँ लीला में तो नहीं लिखा, लेकिन प्रभुपाद ठीक है डायरी में तमाम कृष्ण महाराज बता रहे हैं। तो दोपहर के अंदर प्रभुपाद जी जो है ये उन्हें बोलते हैं, हाँ ये यही पे श्रील प्रभुपाद ने शाम को तमाम कृष्ण महाराज को बुलाया और उन्होंने बोला कि मुझे एक बड़े षड्यंत्र का डर है। समाचार की अंतिम पंक्ति में कहा गया कि संस्थापक आचार्य उपस्थित नहीं थे, उन्हें अफसोस है क्योंकि अगर प्रभुपाद उपस्थित होते मान लीजिए तो क्या होता, वो भवन गोस्वामी को छोड़ के किसको पकड़ते, प्रभुपाद को छोड़ते या संस्थापक आचार्य हो और आपके कहने पर गोली चलाई गई। अब मायापुर के अंदर उस समय कंटेम्पररी सिचुएशन देखे तो यह था, बंगाल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी एक तरफ, तो वो नहीं चाहती थी कि अमरीकी लोगों वाले हरे कृष्णा का जो है प्रचार करें, और एक तरफ वहां के लोकल मुस्लिम्स थे जो इसके अगेंस्ट थे। तो ये सिचुएशन थी, ये 2 अगेंस्ट थे। तो तमाल कृष्ण ने ये कहा कि वह लेखक एक पक्षीय था, बायस था, यह सही नहीं जसता कि भक्तों ने गायों को मारा, भक्त गायों को नहीं मारते। तो ऐसा हो गया। और प्रभुपाद फिर बाद में जो है टिप्पणी दे रहे हैं इसके ऊपर, He said, by Krishna's grace, I was not there. और उसके बाद में जो है प्रभुपाद इस स्थिति के बारे में और मनन कर रहे थे कि क्या होने वाला है, क्या भक्तों की और पिटाई होगी, क्या इस्कॉन का नाम खराब होएगा। लेकिन प्रभुपाद फिर सोच रहे थे, 13 जुलाई की ये बात है, प्रभुपाद said, all those non-devotees who attacked us should be killed. I am seeking that power. जिन 300 गुंडों ने अटैक किया सबको मार देना चाहिए। और फिर काउ प्रोटेक्शन इज अवर लाइफ, कृष्णा हैज ऑर्डर्ड, कृषि को रक्षा वाणिज्य, काउ प्रोटेक्शन एट एनी कॉस्ट। फिर प्रभुपाद एक बंगाली प्रोवर्ब बोलते हैं, देयर इज एन अर्थवर्म, अर्थवर्म को हिंदी में मतलब केंचुआ, तो वो है, व्हाइल डिगिंग द अर्थ इट वाज फाउंड दैट इनसाइड द होल वाज अ बिग स्नेक। तो क्या अर्थ है कि किसी ने देखा कि केंचुए निकल रहे हैं तो इसका मतलब छेद जब धरती के अंदर बिल होगा उसमें और केंचुए होंगे, तो इससे पहले कि ऊपर आए परेशान करें उस बिल के अंदर उनको मार डालते हैं। लेकिन जब धरती को खोला तो क्या निकला वहां पे, वेल डिगिंग द अर्थ वाज फाउंड दैट इनसाइड द होल वाज अ बिग स्नेक। जब खुदाई करी तो बहुत बड़ा उन्हें क्या मिला, सांप मिला। अर्थात हुआ क्या, वो तो केंचे छुटकारा प्राप्त करना चाहते थे, समस्या क्या प्राप्त हुई उन्हें, सांप प्राप्त हो गया। तो प्रभुपाद इसका तात्पर्य बता रहे हैं, एनी इंटेलिजेंट पर्सन कैन अंडरस्टैंड दिस कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा, कोई बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि सब कम्युनिस्ट सरकार की चाल है। लेकिन उन्होंने सोचा कि इन अमरीकियों को, इन हरे कृष्ण वालों को यहां से बाहर निकाल देंगे, अब देखना वो अर्थ फॉर्म को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एक बड़ा सांप मिलेगा। क्या सांप है, बोले कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, अमेरिका, और ये सारे अमरीकी भक्त थे। तो अब जब अमरीकी भक्त भारतीय भारत के साथ ऐसा हुआ तो अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है नेचुरली दे आर गोइंग टू मतलब उसके पावर जताने वाले हैं, और अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको एक्शन लेना पड़ेगा इस जगह। तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, तो प्रभुपाद थोड़े से खुश हुए। Now the American consulate is involved and has gone to Mayapur, and the central government has been involved. The central government is seeking the opposite drive of the communist. और central government चाहती है कम्युनिस्ट सरकार लगे। तो बोले earthworm तो यार इतने निकाली कोशिश कर रहे थे। तो if they find a snake behind the earthworm, they will drive them away. There is no case. Simply the communist government wants to drive away the Americans. This is the plan. And the central government is anxious to keep good relations with the Americans. तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं, it was all planned. प्रभुपाद कह रहे हैं ये सब plan था, पहले से ये होगा। किसका plan था? कृष्ण का। That the Muslims take our grass, that they catch our cow. Krishna became prominent by killing Putana as baby. बोल रहे हैं कि so these opportunities are making for making our movement prominent. तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो है कि पूतना आई थी, सोचा ही छोटा सा बालक है इसको मार डालते हो, लेकिन क्या मिला उन्हें? कृष्ण अपीयर्ड विद अ बिग स्नेक जिसने पूरा प्राणवायु हर लिया पूतना का। लेकिन तो वैसे ही कंपनी से सोचा कि चलो एक ये हरे कृष्णा वाले थोड़े बहुत है इनको हटा देते हैं, लेकिन अभी क्या पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट और अमेरिकन कंसुलेट जो है वो दोनों लगेंगे ऐसे। और फिर कुछ दिनों बाद थोड़े ही दिनों में गोपाल कृष्ण का पत्र आया जिसमें मायापुर की घटना के पूरे तथ्य दिए गए थे। लगभग 50 मुसलमान इस्कॉन के खेतों से फसलें चुरा रहे थे। जब निताई चांद ने रोकना चाहा तो उन लोगों ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसके सिर पर 3 जगह घाव कर दिए। बाद में जब मंदिर के अस्पताल में उसका उपचार हो रहा था तो फिर वे लोग फिर आए। अस्पताल में उन्होंने निताई चांद की पिटाई की और एक महिला को निर्वस्त्र कर दिया। इसी बीच 250 मुस्लिमों ने फिर चढ़ाई कर दी। उन्होंने दरवाजे तोड़ डाले, टेलीफोन और बिजली के तार काट दिए और पानी के पंप नष्ट कर दिए। भीड़ को डराने के लिए भवानंद ने हवाई गोली चलाई थी, किंतु जब तितर बितर नहीं हुए तो उसने फिर गोली चलाई जिससे 2 आदमी घायल हो गए। इसी बीच आक्रमणकारियों ने गुरुकुल के एक शिक्षक के दोनों हाथ तोड़ दिए थे और अन्य अनेक भक्तों को मारा पीटा। 2 घंटे बाद पुलिस आई और भक्तों से कृष्णनगर थाने जाकर शिकायत दिखाने को कहा। कृष्णनगर थाना वहां से 20 मील दूर था। जब भक्त थाने पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और जो 2 भक्त गंभीर रूप से घायल थे उनको उपचार से वंचित रखा गया। भवानंद गोस्वामी अब भी जेल में थे। प्रभुपाद ने कहा कि यह हरे कृष्ण के लोगों को भगा देने के लिए षड्यंत्र था। वे चाहते कि पूरा बंगाल अनिश्चरवादी बन जाए। जब तमाल कृष्ण ने कहा कि इस घटना से उनके गांवों में धर्मोपदेश पर बुरा असर होगा तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया। तमाल की चिंता है कि अब जितना प्रीचिंग है बंगाल में रुक जाएगा। प्रभुपाद कह रहे नहीं, बहुत जल्दी यह मामला हमारे अनुकूल साबित होगा। मेरे विचार से केंद्रीय सरकार कार्यवाही करेगी। यह कंस का कृष्ण के विरुद्ध होने जैसा है। कृष्ण की विजय निश्चित है, कृष्ण को कोई हरा नहीं सकता। यदि मैं वहां होता तो वे मेरे ऊपर गोली चलाने का अभियोग लगाते, मुझे गिरफ्तार कर लेते। अब मैं वृद्ध हूं, मैं कोई साहसी काम नहीं कर सकता, इसलिए आप सब हर काम बहुत सावधानी से करें। तो प्रभुपाद जो है ये सोच रहे हैं कि मान लीजिए अगर प्रभुपाद का नाम खराब होता है, कृष्ण की चिंता है ना, अगर प्रभुपाद के लास्ट डेज में ऐसी कोई घटना होती जिसमें प्रभुपाद इन्वॉल्व होते हैं तो बहुत ही एक जो है दुष्प्रचार होता। तो कृष्ण की जो है कृष्ण की चिंता है कि प्रभुपाद के सम्मान को बचाए रखे। फिर थोड़े दिन बाद जयपता का स्वामी की मायापुर की घटना की आंखों देखी पूरी रिपोर्ट डाक से आई। माया अब हुआ क्या, पूरी रिपोर्ट और कुछ दिनों बाद आ रही है, तो वहां पे क्या हो रहा है? मायापुर के स्थानीय हिंदू जो कुछ हुआ था उस पर अतिशय क्रुद्ध थे। तो प्रभुपाद बताते वहां की घोष कम्युनिटी, घोष GSOSH घोष कम्युनिटी थी, और ये प्रैक्टिकली ये गायों का रखवाली करते थे और होते गुंडे थे। प्रभुपाद ऐसा कह रहे हैं कि गायों का अधिकांश कंट्रोल मतलब ये लोग गाय रक्षा करते थे और ये वैसे स्वभाव से देर गुंडास। प्रभुपाद कह रहे हैं तो जितने हिंदू थे खासकर घोष कम्युनिटी बिल्कुल आग बबूला हो गई और वे इस्कॉन मंदिर के समर्थन में सामूहिक प्रार्थना पत्र तैयार कर रहे थे। यद्यपि समाचार पत्र में छपी खबरें गलत थी, लोग धीरे धीरे तथ्यों से अवगत होने लगे। जय पताका ने सजीव और स्पष्ट विवरण भेजा था। अब उस विवरण के अंदर क्या हुआ था ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी, बाकी तो सारा सीन सेटिंग कर रहे थे, सब कष्ट सहना पड़ा, लेकिन उस कष्टों के बाद में क्या हुआ। जय पताका मारे में लेटर में लिख रहे हैं कि भवानंद और अन्य भक्तों को हथकड़ियों में नवद्वीप से न्यायालय में ले जाया गया था, हथकड़ियां डला के चेन डाल के, और वो लोग क्या कर रहे थे उस दौरान, ऑल थ्रू आउट ये 10 हफ्ते जैसे मेरे को समझ में आया पढ़ने के बाद, इनको हथकड़ियां लगा के और चेन डाल के पूरे सड़क में लेके जा रहे हैं कोर्ट तक, और ये लोग भक्त लोग वहां हरे कृष्ण भवन में जप कर रहे हैं, और नवद्वीप के लोग उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित कर रहे थे, सब उनको प्रणाम कर रहे थे, अमेरिकन डिवोटीज को। उन्होंने उसने लिखा था कि भक्त अभी भी जेल में थे और निरंतर कीर्तन कर रहे थे, और जब प्रभुपाद ने सुना फिर कुल मिलाकर रिपोर्ट आशापूर्ण थी। तो प्रभुपाद की जो एक आशा थी, एक संदेह था, मायापुर में प्रसाद का वितरण जारी था, पश्चिम बंगाल में पुस्तकों का वितरण वृद्धि पर था, और धर्मोपदेशक दल जहां भी जा रहे थे अच्छा स्वागत पा रहे थे। श्रील प्रभुपाद की भविष्यवाणी सच हो रही थी, आक्रमण वाली घटना भक्तों के पक्ष में बदल रही थी। प्रभुपाद ने टिप्पणी की कि शत्रु ने सोचा था कि वे कृष्ण के भक्तों पर आक्रमण करके एक बगीचे का सांप खोद रहे हैं, किंतु वे पा रहे थे कि वास्तव में उन्होंने एक जहरीला नाक खोद लिया है। और इस दौरान एक प्रसंग में बीच में बोलना चाहता हूं, जिसके लिए प्रभुपाद हरिदास ठाकुर प्रहलादपुर दोनों को बोलते हैं। जब प्रभुपाद मायापुर के भक्तों में के बारे में बात कर रहे थे जो कृष्ण के लिए अपने प्राण न्योछावर करने को तैयार थे, तो भावावेग से उनका गला रुंध गया और वे रोने लगे। प्रभुपाद स्टार्टेड क्राइंग टियर्स कि भक्त लोग इतना अधिक सैक्रिफाइस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे हमारे मायापुर के लोगों की। उन्होंने उल्लेख किया कि किस प्रकार हरिदास ठाकुर जेल में डाल दिए गए थे और वहां उनकी पिटाई हुई थी, और किस प्रकार प्रहलाद प्रताड़ित किए गए थे जब तक नरसिंह भगवान स्वयं नहीं प्रकट हुए। श्रील प्रभुपाद ने रोते हुए कहा, चिंता मत करो, वे इस तरह बोल रहे थे मानो मायापुर के उनके सभी भक्त उनके समक्ष उपस्थित हो, कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा, हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं जहां तक हमारी बुद्धि काम करती है। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि संसार के हर कोने में आंदोलन को पहुंचाना चाहिए, हमारी शक्ति सीमित है। तो इससे एक चीज पता लगती है कि जो भक्त भगवान के लिए कुछ भी त्याग करता है, सेक्रीफाइस करता है, इट नेवर गोज अननोटिस्ड। हो सकता है इस दुनिया के लोग वो खुद स्वयं भी भूल जाए कि मैंने कुछ किया था, ये अन्य लोग, लेकिन भगवान कृष्ण गुरु परंपरा कभी इसको भूलते नहीं। और ऐसा नहीं कि वो एहसान फरामोश है या कृतज्ञ है, वो करोड़ों करोड़ों गुना उस भक्त को जो है रिटर्न में देते हैं, लेकिन पहला स्टेप भक्त को लेना पड़ेगा सेक्रीफाइस करने के लिए। और जैसे भक्त लेता है तो भगवान तो अपनी कृपा निछावर करने के लिए उसको तैयार है, और जितना अधिक उस कृपा को भक्त स्वीकार करता है और निष्किंचन भाव समाधि से लगने का पूरा प्रयास करता है, भगवान से बहुत बुद्धि देते हैं और शक्ति देते हैं और परीक्षाएं देते हैं ताकि भक्ति और आगे बढ़ सके। हरे कृष्ण श्री प्रहलाद महाराज की, श्री प्रभुपाद की, पिता गौर प्रेम हरे कृष्ण। अच्छे भक्तों धन्यवाद। हरे कृष्ण।